अगला दसवां शीर्षक है, खुल गए छंद के बंध। हृदय के उच्छ्वास से शब्दों के रूप के साथ ही उनका अन्वय क्रम और प्रभाव भी प्रभावित होता है। छायावादी भावों ने यदि शब्दों को कल्पना से रंजित और मानसर बनाया तो अपने आवेग से उन शब्दों को एक विशेष ढंग से क्रम संबंध और गति में भी ढाल दिया। इस तरह छायावादी वाक्य विन्यास में भी परिवर्तन हुआ। द्विवेदी युग के कवि कविता में सीधे और पूरे वाक्य लिखते थे। सामान्य बोलचाल के गद्य की तरह उनकी कविता में भी कर्ता कर्म क्रिया प्रायः यथाक्रम आते थे, जैसे हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। उनके यहाँ वाक्य में दो पदों का क्रम वही बदलता था जैसा छंद के प्रवाह में बाधा पड़ती थी। छंद अनुरोध के अतिरिक्त वे वाक्य में पदक्रम को प्रायः नहीं बिगाड़ते थे, लेकिन छायावाद के भावावेश में पदक्रम एकदम उलट पुलट गया। अक्सर देखा जाता है कि आवेग में साधारण बातचीत में भी वाक्य में पदों का क्रम बदल जाता है। जब हम किसी के चल जाने की त्वरा को सूचित करना चाहते हैं तो सीधे सीधे वह चला गया कहने की बजाय चला ही तो गया बोलते हैं। जिस तरह उमंगों से भरे हुए बच्चे एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठते और न सीधे खड़े रह सकते बल्कि सीधे खड़े रहना उनके लिए दंड हो जाता है, उसी तरह भावकुलता में वाक्य भी सीधे नहीं रह सकते। इसलिए छायावादी कविता में भी हम शब्दों के क्रम में काफ़ी उलट फेर पाते हैं। कभी कभी यह पद क्रम इतना उलट पुलट जाता था कि उनको अन्वय क्रम से सजाकर अर्थ करने में कठिनाई होती है। प्रसाद के यहाँ ऐसा बहुत अच्छा हुआ। कमायनी के दुर्होता के लिए अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है। पुराने पंडितों झुंझलाकर इसे दुरान्वय दोष कहने लगते हैं। उदार हृदय की बात बाह्य अनुकृति के स्थान पर हृदय की अनुकृति बाह्य उदार तथा तरल आकांक्षा से भरा आशा का हालात सो रहा है कि जगह तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का हालात, जैसे वाक्य तो अपेक्षाकृत अधिक सरल और छोटे होने के कारण बोधगम्य है। इससे भी अधिक भीड़ वाक्य विन्यास का मायने में मिलते हैं। संयुक्त वाक्यों में भावावेग बस आकर अक्सर उनका आपसी संबंध भूल जाते हैं, जैसे संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। प्रस्तुत वाक्य विन्यास के अनुसार अर्थ करने से में भारी कठिनाई है। यदि इसे थोड़ा ठीक करने करके आरंभ में यदि और हो सकता क्रिया की जगह होता रख दें तो दोनों वाक्यों का पारंपरिक संबंध ठीक हो जाएगा और संपूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, यदि संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न होता तो फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कह बकता, और तब इसका अर्थ सुगम हो जाता। इसी आवेग में वे प्रायः अनेक पद छोड़ जाते हैं जिनके अभाव में बड़ी अस्पष्टता मालूम पड़ती है। इसीलिए पुराने पंडित सामान्य रूप से संपूर्ण छायावादी कविता में और विशेष रूप से प्रसाद में न्यून पदत्व दोष की शिकायत करते हैं। कामायनी से ही दो एक उदाहरण हैं। मनन कराओगी तो कितना उस निश्चित जाति का जीव, यहाँ होना चाहिए मैं उस निश्चिंत जाति का जीव हूँ, लेकिन कर्ता क्रिया दोनों के गायब होने से कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह मन जिसमें सुख सोता था क्रिया के दौरान दो कर्ता हो गए। मन और सुख यदि दो कर्ता हैं तो क्रिया को बहुवचन अर्थात सोते थे होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्ता केवल मन है और सुख के बाद से परसर्ग छूट गया है, इसीलिए यह सारी गड़बड़ी है। होना चाहिए था मन जिसमें सुख से सोता था। यह सब देखकर प्रसाद के ही शब्दों में उनसे पूछने की इच्छा होती है कि उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें, परंतु यह उलझन भी अपने आप में कम उलझी हुई नहीं है। एक समझू क्रिया तथा या संयोजक के बिना सब कुछ उलझ गया है। यदि इसे ऐसा कर दें तो उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें। जिस तरह श्रद्धा ने लज्जा से कहा था कि अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो, उसी तरह यह सब देखकर विशेष रूप से प्रसाद के सामने तथा सामान्य रूप से सभी छायावादी कवियों के सामने थोड़े लिंग परिवर्तन के साथ इसी वाक्य को दोहरा दिया जाता जा सकता है। वैसे जहाँ तक अस्पष्टता का सवाल है उसके बारे में प्रसाद के विचार बड़े ही स्पष्ट थे। विरोधियों ने जब छायावाद पर अस्पष्टता का आरोप लगाया तो उन्होंने जनवरी 1927 के इंदु में जवाब दिया, पुराने अभिभावकों की शिकायत है कि अस्पष्टता और उच्छंस श्रृंखलता बढ़ रही है, पर वह भूल जाते हैं कि ये दोनों बातें जीवन के बसंत और यौवन के संधिकाल के दो बहुत ही आवश्यक उपकरण हैं। अलहरपन ही जीवन का विकास है। हम यह भी कहें तो अनुचित न होगा कि सौंदर्य सदैव एक रहस्य है। अतएव जहाँ जितनी ही सुंदरता होगी वहाँ उतनी ही अस्पष्टता रहेगी। सौंदर्य की भाषा में जो अस्पष्टता, संकोच और सिर झुकाकर कभी ऊपर देख लेने वाली लज्जा की सहेली है, वही साहित्य विज्ञान में प्रतियोगिता के चिन्ह है। निसंदेह प्रसाद ने जिस अस्पष्टता के सौंदर्य की प्रशंसा की है वह आवश्यक है, परंतु वह चितवना और कछु ये ही बस होत सुजान। अस्पष्टता की भाषा को तो अस्पष्ट होना ही चाहिए। वह भाषा एकदम अविधा भले न हो, वह लाक्षणिक और ध्यानात्मक ही रहे तो रहे, लेकिन उसके वाक्य विन्यास में दुरान्व और न्यून पदत्व तो न हो। यदि भावाबेग में कोई हकलाने लगे और फिर उस हकलाने को स्वाभाविकता की युक्ति देकर उचित सिद्ध करने लगे तो उसके साथ हमारी सहानुभूति भले हो, उसके विचारों के सहमत होना तो असंभव है। भावाबेग की तीव्रता में कभी कभी छायावाद के वाक्य प्रवाह की यही दशा हो जाती थी। जहाँ यह विश्रृंखलता न होती थी वहाँ भी छायावादी कविता के वाक्य प्रायः क्रियाहीन दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है खड़ी बोली की अकारांत क्रियाएं छंदों की रचना में कुछ ऐसी बेमेल मालूम होती हैं कि उन्हें बैठाने में बड़ी मुसीबत होती है। शुरू शुरू में यह कठिनाई भारतेंदु को भी हुई थी। सितंबर 1881 के भारत मित्र में उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें स्वीकार किया कि इस भाषा की दीर्घ क्रियाओं में दीर्घ मात्र विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। पूछा जा सकता है कि यह कठिनाई क्या उर्दू वालों के सामने नहीं थी? जरूर थी, लेकिन उन्होंने इस कठिनाई को दूर करने के लिए दीर्घ मात्राओं को ह्रस्व करके पढ़ने की सुविधा प्राप्त कर ली। संस्कृत की उच्चारण परंपरा का अनुसरण करने के कारण हिंदी ऐसा न कर सकी और वह दीर्घ स्वरों के उच्चारण के लिए भी पूरा अवसर देती थी। ऐसी स्थिति में क्रियाओं को छोड़ देने के सिवा और कोई रास्ता न था। उच्चारण के मामले में हिंदी वालों ने संस्कृत का तो अनुसरण किया, परंतु वे यह भूल गए कि संस्कृत हिंदी की तरह अश्लिष्ट अथवा विशिष्ट जिसलिष्ट भाषा नहीं है। हिंदी की तरह संस्कृत में संयुक्त क्रियाएं नहीं होती, इसलिए संस्कृत तो अपनी क्रियाओं के साथ भी कविता का माधुर्य बनाए रख सकती थी, किंतु हिंदी में एक भाव के लिए छोटी छोटी क्रियाओं को इतने बड़े पुंज की आवश्यकता होती है कि उस बड़े परिवार को लेकर चलने में अपने को संभालना ही अपरंपार हो जाता है। पलों की भूमिका में इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए पंत लिखते हैं, खड़ी बोली की कविता में क्रियाओं और विशेषतः संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए, नहीं तो कविता का स्वर शिथिल पड़ जाता है और खड़ी बोली की कविता में यह दोष सबसे अधिक मात्रा में विराजमान है। हर को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिए, इसका प्रयोग प्रायः व्यर्थ होता है। इस भय से बाज आकर छायावादी कविता ने श्रुति मधुरता उत्पन्न करने में काफी सफलता प्राप्त की, लेकिन इसके अभाव में कभी कभी पूरी कविता अनेक वस्तुओं के नामों की सूची मालूम पड़ने लगती है, जैसे नभ में अवनी, अवनी में अंबर, सलील भस्म मारुत के फल, हम ही जल में थल, थल में जल, दिन के तम पावक के तुल। संयुक्त क्रियाओं से बचने के लिए निराला ने कभी कभी कृदंतज क्रियापदों अथवा समास श्रृंखला का सहारा लिया है। ऐसा उन्होंने वही किया जहाँ अर्थ अमित अति आखर थोरे का आदर सामने रहा है। राम की शक्ति पूजा के आरंभ में ही समास श्रृंखलता है, जैसे कोई तार की भाषा लिख रहा हो। उदाहरण के लिए राघव लाघव राम अड़वारणगत युग्म प्रहर उद्धत लंका पति मर्दित कपि दल बल विस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सर भंग भाव विद्दांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। यह समस्त पद योजना पंत से भी जटिल है, क्योंकि पंत ने हिंदी की प्रकृति के अनुसार कारक प्रसंगों के प्रयोग से पदों को स्फुट कर दिया है, जबकि निराला ने 19 समासों में जकड़ दिया है। इस गुंफित पद योजना के दोष उस जगह अधिक खटकते हैं जहाँ वाक्य लंबे हो जाते हैं, परंतु जब छोटे छोटे वाक्य आते हैं तो क्रियाओं की कमी नहीं खटकती। वाक्य विन्यास संबंधी ये सभी बातें छायावादी गद्य में भी मिलती हैं। निराला के वर्तमान धर्म निबंध में इस गुंफित शैली की जटिलता का चरम रूप देखा जा सकता है। पल्लव के प्रवेश का आरंभ ही जिस निहारिका से होता है उसकी माला पूरे पैराग्राफ तक उसी तरह गूंथी चली गई है। प्रसाद के निबंधों की भाषा संबंधी जटिलता सबको वाक्य छंद की इकाई है। गद्य हो चाहे पद्य, सभी में एक प्रकार से छंद होता है और वह छंद वाक्य की गति और यति में निहित रहता है। वाक्य की गति और यति से एक लय ध्वनित होती है और इस लय का तार वक्ता के हृदय में होता है। हृदय के स्पंदन से ही वाक्य की लय निर्धारित होती है। इसलिए छायावादी कवि के जिस हृदय स्पंदन ने वाक्य विन्यास को प्रभावित किया, उसी ने वाक्य विन्यास के माध्यम से छंदो विधान का भी निश्चय किया। छायावाद का यह हृदय स्पंदन मुख्यतः प्रगीत भावना लिरिसिज्म थी। छायावादी छंदों में से अधिकांश का निश्चय प्रगीत भावना ने किया। कौन से छंद खड़ी बोली की प्रवृत्ति के अनुकूल है, इनकी समस्या पूर्ववर्ती कवियों ने काफी वाद विवाद तथा प्रयोग के बाद बहुत कुछ हल कर दी थी। द्विवेदी युग से पहले भारतीय युग में इसका निर्णय एक हद तक हो गया था कि उर्दू कविता में प्रचलित फारसी के छंद हिंदी के संस्कार के अनुकूल नहीं है। नवंबर सन 1887 को हिंदुस्तान में राधाचरण गोस्वामी ने खड़ी बोली का पद्य शीर्षक निबंध के द्वारा यह आशंका उठाई कि अब इस प्रकार की भाषा में छंद रचना करने में कई आपत्ति है। प्रथम तो भाषा के कवित्व, सवैया आदि छंदों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता। तब भाषा के प्रसिद्ध छंद छोड़कर उर्दू के बैत, शेर, गजल आदि का अनुकरण करना पड़ता है, पर फारसी शब्दों के होने से उसमें भी साहित्य नहीं आता। यदि फारसी बहर में उसके बाद भी कई कविताएं लिखी गईं और प्रसाद ने विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं तथा न छेड़ना उस अतीत स्मृति के खींचे हुए वीर तार कोकिल जैसी कई सुंदर कविताएं फारसी बाहर में लिखीं, फिर भी हिंदी कवियों ने सामान्य रूप से इसे हिंदी संस्कार के विपरीत मानकर नहीं अपनाया। जहां तक कवित सवाइयों में खड़ी बोली की कविता लिखने का सवाल है, द्विवेदी युग के गोपाल शरण सिंह, हितैषी आदि द्वारा खड़ी बोली में ललित सवाइये और घनाक्षरी लिखे जाने के बावजूद यह मान लिया गया था कि ये छंद अपने पुराने रूप में आधुनिक भावों के अनुकूल नहीं है। राधाचरण गोस्वामी की आशंका दूर करते हुए श्रीधर पाठक ने 15 जनवरी 1888 हिंदुस्तान में लिख दिया कि घनाक्षरी, सवैया इत्यादि के अतिरिक्त अनेक छंद ऐसे हैं कि जिनमें खड़ी बोली की कविता बिना कठिनाई और बड़ी सुघराई के साथ आ सकती है। स्वयं भारतीयों ने भी उन दिनों फारसी छंद तथा घनाक्षरी सवैयों के अतिरिक्त एक लोक प्रचलित छंद में पद्य प्रयोग किया था, जिसकी एक द्विपदी इस प्रकार है। साँझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं, कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, बस दिन चार बसेरा है। घनाक्षरी सवैया तथा फारसी छंदों से बचने के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के वर्ण वृत्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और उस पुनरुत्थान युग में अनेक कवियों ने उनका साथ दिया। उत्साह में आकर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पूरा प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्ण वृत्तों में लिख डाला। फिर भी उसी प्रयोगकालीन अवस्था में कवियों ने स्वीकार कर लिया कि हिंदी में संस्कृत के वर्ण वृत्तों का पुनरुत्थान असंभव और अरुचिकर है। आचार्य शुक्ल ने भी इसी प्राचीन रुचि का विरोध किया। अब कवियों के सामने एक ही रास्ता रह गया। यह रास्ता उन छंदों का था जिनमें भारतेंदु ने प्रयोग किया था और श्रीधर पाठक ने उस निबंध में जिनकी चर्चा की तथा रचना भी की। श्रीधर पाठक के एकांत योगी, जगत संचार सार, जगत सच्चाई सार आदि की सफलता ने आधुनिक हिंदी कविता के छंद पथ का पथ द्वार खोल दिया। लोगों ने अनुभव किया कि प्रकृति पथ यही है और इसी को प्रशस्त करना हमारा कर्तव्य है। श्रीधर पाठक ने इन ललित छंदों का आदि स्रोत तत्कालीन रूप प्रचलित लावणियों में था, इसे सभी लोग जानते हैं। श्रीधर पाठक ने रचना सिद्धि के द्वारा दिखला दिया कि कविता के छंदों का स्रोत लोक कंठ है। संस्कृत, फारसी तथा रीतिकालीन छंदों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न व्यर्थ है। प्राचीन छंदों के ढांचे में आधुनिक भावनाएं फिट नहीं हो सकती। आधुनिक भावनाओं की नवीनता की ओर ध्यान न देकर उनके पुराने छंदों में कसने पर असफलता ही होगी। स्वयं संत भक्तकालीन के कवियों ने जो हिंदी कविता में भावानुरूप छंद के प्रवर्तक हैं, लोक कंठ से उठने वाले गीतों के आधार पर ही अपनी कविता का छंद विधान किया था। श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी के पथ पर चलते हुए छायावादी कवियों ने लोक प्रचलित स्वरों को ही अपने छंदों का आधार बनाया, परंतु उन्होंने उन लोक प्रचलित छंदों को इतना परिष्कृत कर दिया था कि अब उनका मूल स्रोत ढूंढना भी दुष्कर है। पंत प्रसाद निराला और महादेवी ने अधिकांशतः जो 30-31 मात्राओं वाला छंद छोड़े थोड़े बहुत अंतर के साथ लिखा है, वह कहीं तो लावणी के नज़दीक है और कहीं आल्हा या कड़खा के। पंत ने जिस छंद में सूर्यपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर वाली बादल कविता लिखी है, तथा प्रसाद ने कामायनी में हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा लिखा है, और निराला ने नाचे उस पर श्यामा में जो फूले फूल सुरभि व्याकुल अले गूंज रहे हैं चारों ओर लिखा है, और महादेवी ने जो निश्वासों का नीड निशा का बन जाता जब से नागर। उन सबके मूल में लोक प्रचलित आल्हा का ही छंद है। यदि इसे कोई 13वीं 14वीं शती का पुराना छंद कहकर यह सिद्ध करना चाहे कि यह अभी तो छायावाद से प्राचीन का ही पुनरुद्धार है, तो उसकी शंका के समाधान के लिए यहाँ केवल इतना ही संकेत करना पर्याप्त होगा कि प्रायः अधिकांश विद्वान आज आल्हा की प्राचीनता में संदेह करते हैं, और कुछ विद्वानों का तो दृढ़ विश्वास है कि आल्हा एकदम 19वीं सदी की आधुनिक रचना है। यह छंद लोक कंठ में कब आया यह तो कहना कठिन है, लेकिन लिखित कवि को देखते हुए मालूम होता है कि सबसे बड़े लोक कवि तुलसीदास को इस छंद का पता न था। यदि उस समय लोक कंठ में वह छंद होता तो सोहर नेहचू बरवय लिखने वाला कवि इसे छोड़ देता, यह बात कयास के बाहर ही मालूम होती है। वैसे पिंगल शास्त्री इसे मध्ययुगीन वीर छंद बतलाते हैं, परंतु पिंगल शास्त्र में यह वीर छंद कब घुसा यह अनुमान का विषय है। क्या यह संभव नहीं है कि शास्त्र में इसका समावेश आल्हा के बाद उसे देखकर हुआ हो? जो हो, प्रयोग और प्रचलन की दृष्टि से यह छंद आधुनिक है। मध्ययुग में इस छंद का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता, जबकि छायावादी कविता में इसकी बहुलता है। आवश्यकता अनुसार छायावादी कवियों ने इसमें कांट छांट तोड़ मड़ोड़ करके इसके कई भेद उपभेद बना लिए। पूरी कामायनी में इसी के भेद उपभेद हैं। चिंता करके आशा में चिंता में चिंता सर्ग में 31 मात्राओं का लघुवंतुक वाला छंद है, तो उसमें से अंतिम लघुमात्र करके आशा में 30 मात्राओं का छंद रचा गया है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यदि हुई के बाद एक मात्रा का न जोड़ दीजिए तो चिंता का छंद बन जाए। निर्वेद का भी यही छंद है, और इसी के आदि संत अंत में मात्रा भेद द्वारा 30 मात्राओं का ही एक और छंद स्वप्न में अपनाया गया है। जैसे संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती, लेकिन स्वप्न में प्रायः आशा वाले छंद की ही उदाहरणी हो गई है। एकांतवासी योगी के सुनिए, झारखंड वनवासी दयाशील हैं वैरागी के साथ इसे मिलाकर देखें तो पता चलेगा कि यह भी लावणी ही है। इसी में दो मात्राएं और जोड़कर रहस्य सर्ग के छंद रचे गए हैं। जैसे ऊर्ध्व देश उस नील तमस में अस्तब्ध हो रही अचल हिमानी श्रद्धा और काम अथवा लज्जा सर्ग के छंद 32 मात्राओं के हैं, और वे भी मूलतः इसी पर आधारित हैं। इन तीनों सर्गों तथा ईड़ा सर्ग के छंद के लय एक सी है। इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं। कौन तुम संसुति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ एक, मधुमेह बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कोमल किसलय के अंचल में नहीं नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी लज्जा, झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ईड़ा। इसी तरह पंथ की अधिकांश कविताओं में लावणी छंद को ही भेदोपद्य भेद मिलते हैं। प्रथम रश्मि, छाया, बादल, अनंग, बालापन, स्वप्न, अप्सरा आदि का छंद वस्तुतः लावणी ही है। इनमें से प्रत्येक कविता का एक एक पद लेकर श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी से मिलाने पर इस तथ्य की पुष्टि हो जाएगी। और सच पूछिए तो इस छंद के अलावा पंथ के पास और कोई छंद भी नहीं है। निराला ने यमुना के प्रति इसी लावणी छंद में लिखा है, तुकांत कभी गुरु वर्ण में होता है और कभी लघु वर्ण से। लावणी के अतिरिक्त आगे चलकर कुछ और भी लोक प्रचलित गीत छायावाद में अपनाए गए। महादेवी ने 16 मात्राओं वाले चरण के एक गीत को अपनाकर उसके एक चरण को टेक और उसके द्विगुणित रूप को अंतरा बनाकर बहुत से गीत लिखे जो हिंदी में काफी लोकप्रिय हुए। इस छंद का आरंभ संभवतः रश्मि से ही हुआ है। उदाहरण के लिए यह गीत, कौन तू मेरे हृदय में, कौन मेरी कशक में, नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्याले लोचनों में घुमड़ घीर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तरह तरह के लोग गीत अपनाने तथा छंद प्रयोग करने में निराला सबसे आगे रहे। छायावादी कवियों में उन्हें छंद गुरु कहा जा सकता है। लोक गीत के उदाहरण के लिए अनामिका का अपराजिता शीर्षक गीत द्रष्टव्य है। हारी नहीं देख आंखें परिनागरी की, नभ कर पार पाखे परिनागरी की, तिल नीलिमा को रहे स्नेह से भर, जगकर नई ज्योति उतरी धरा पर। इस तरह छायावाद के मुख्य छंद प्रवृत्ति को देखने से पता चलता है कि इसका प्रेरणा स्रोत लोक जीवन है और उसी से बहुत कुछ उपकरण लेकर छायावादी कवियों ने तरह तरह के छंद गढ़े। परंतु जैसा कि सर्वविदित है, पुनरुत्थान भावना से छायावाद का पिंड नहीं छूट सका था। इसलिए मध्ययुग के अनेक हिंदी छंदों को भी छायावादी कवियों ने पुनर्जीवित किया। रोला अथवा काव्य मध्ययुग का ऐसा ही छंद है जो तब से लेकर आधुनिक युग तक काफी लोकप्रिय रहा। ब्रजभाषा कवि रत्नाकर ने तो सारा गंगावतरण रोला में लिखा ही। श्रीधर पाठक भी उजड़ ग्राम को रोला में बांध गए। पंथ को गोला रोला इतना प्रिय रहा कि उच्छ्वास में एक रोला फूटा तो परिवर्तन से उसकी झड़ी लग गई। उच्छ्वास में गरज गगन के गान गरज गंभीर स्वरों में निकला तो परिवर्तन में, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। प्रसाद भी कामायनी को भाव भाषा छंद सभी तरह से छायावाद का प्रतिनिधि काव्य बनाने के प्रयत्न में उसके अंतर्गत रोला को स्थान देना न भूल सके। संघर्ष सर्ग पूरा का पूरा रोला में है। श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह स्वप्न बना था। मध्ययुग के अन्य छंद भी छायावाद में फिर से जिलाए गए। इनमें रूपमाला, सखी, राधिका, पीयूष वर्षण, प्लवंगम, अरिल्ल आदि के नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद का आंसू सखी छंद में है और कामायनी का आनंद सर्ग भी उसी में है। परंतु इन दोनों की तुलना स्पष्ट हो जाता है कि यह छंद करुण रस के लिए ही उपयुक्त है। आनंद की अभिव्यंजना में यह असफल हो गया है। महादेवी ने भीतर और रश्मि में इस छंद के कुछ गीत लिखे हैं, लेकिन सखी छंद को जो सिद्धि आंसू के रो रो कर शिशक शिशक कर कहता मैं करुण कहानी में मिली है, वह महादेवी को न तो रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली में मिली है, और न चीर तृप्ति कामनाओं का कर जाती निष्फल जीवन में। वस्तुतः इस छंद के लिए व्यथा के लिए जिस भाव उद्गार की आवश्यकता है उसका निर्वाह आंसू में हुआ है। वह महादेवी की बौद्धिक दुखानुभूति से दुर्लभ है। यह छंद युक्ति के लिए नहीं रुदन के लिए है। इसी तरह रूपमाला का बहुत सफल निर्वाह प्रसाद ने कामायनी के वासना सर्ग में किया है। इसी छंद में उन्होंने मदिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास दिखलाया है। ग्रंथि में राधिका छंद को जब सजीव कर दिया गया है, हिंदी कविता में पहली बार इस छंद को सशक्त और सहृदय रचयिता प्राप्त हुआ। यह छंद अत्यंत अलंकृत है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम क्या किसी ने नहीं किया है। इंदु पर, उस इंदु मुख पर साथी में जो थिरकती हुई लय है, उसे संभालना साधारण कंठ का काम नहीं हो सकता। पुराने छंदों को पुनर्जीवित करने में भी छायावाद का अपना विशिष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है। छायावाद के भाव कवि केशवदास के समान तरह तरह के छंदों के नमूने तैयार करने के लिए छंद रचना नहीं कर रहे थे, उनकी भावुकता यहाँ भी अपना काम कर रही थी। उन्होंने बृहद पिंगल शास्त्र से अपने रुचि के अनुसार कुछ छंदों का चुनाव किया और फिर उनकी लय में निहित भाव का पता लगाकर उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त छंद का प्रयोग किया। छंद का अर्थ उनके लिए केवल मात्रा, तुक, यति आदि न था। उन्होंने पिंगल के व्याकरण को अपने भावों से रंगकर सजीव काव्य संगीत बना दिया। पल्लव की भूमिका में कुछ छंदों की लय में निहित भावों पर प्रकाश डालते हुए पंत लिखते हैं कि पीयूष वर्षण रूप माला सखी और प्लवंगम छंद में करुणा है। इसी स्वच्छंद भाव की तर्क संगत परिणति मुक्त छंद है। अर्थ की दृष्टि से मुक्त छंद शब्द के भीतर स्वतो व्याघ्यात है। छंद का अर्थ यह है बंधन, फिर मुक्तक बंधन का क्या अर्थ? यदि उसमें बंधन है तो फिर वह मुक्त कैसे? इसलिए कुछ लोगों ने इसका अर्थ किया छंद से मुक्ति। उनके अनुसार मुक्त छंद वह है जिसमें कोई छंद ही न हो, लेकिन इस तरह की बातें वही कहते हैं जिनका संगीत बोध कुंठित होता है। वस्तुतः मुक्तक छंद की कविता पढ़ने से किसी न किसी लय का बोध होता ही है। इससे यह पता चलता है कि मुक्त छंद में लय तो है, परंतु उसमें तुक नहीं है और उसके सभी चरण सम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मुक्त छंद में छंद के वह आडंबर तो नहीं, परंतु उसकी आत्मा लय अवश्य है। इस तरह पंत छंद के वह आडंबर से तो मुक्त होता है, परंतु उसकी लय में बाधा रहता है। छंद के वह आडंबर से मुक्त वह होता ही इसलिए है कि छंद की आत्मा का अधिक से अधिक मुक्त विकास कर सके। अस्तु, मुक्त छंद का अर्थ है छंद ऋण से मुक्ति, छंद मात्र से मुक्ति नहीं। इस तरह मुक्त छंद शब्द में विरोधाभास है, वास्तविक अंतर विरोध नहीं। सवाल यह है कि यदि कविता को चार तुकांत घनाक्षरियों में लिख दिया जाता तो इसमें क्या कमी आ जाती? इस सवाल का ठीक ठीक उत्तर तो रूपांतर के करने के बाद ही दिया जा सकता है, परंतु अनुमान के सहारे इतना तो कहा ही जा सकता कि अलग अलग चार घनाक्षरियों से इस कविता को लिखने पर सबसे पहले इसके भाव प्रवाह की अनुमिति समाप्त हो जाती, परंतु इससे भी भयंकर बात यह होती कि घनाक्षरी के बधे हुए सम चरणों में इसमें स्थान स्थान पर आए हुए भावों की गति का पूरा निर्वाह नहीं हो पाता। जैसे पवन की गति बदलने के लिए निराला ने जो यह लिखा है कि फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिर कानन कुंजलता पुंज को पार कर पहुंचा। गीत तो निराला ने भी लिखे हैं और गीतिका उनके 100 गीतों का संग्रह है, परंतु गीतिका के अधिकांश गीत संगीत को ध्यान में रखकर लिखे जाने के कारण प्रगीत के गौरवपूर्ण पद से हटकर संगीत के आसन पर चले गए हैं। इस दृष्टि से महादेवी के गीत अधिक सफल लिरिक अथवा प्रगीत हैं। प्रगीत और गीत में थोड़ा अंतर तो करना ही चाहिए। रविंद्रनाथ ने गाने के लिए गीत अलग से लिखे हैं, उन गानों के अलावा काव्य संग्रह में उनके बहुत से प्रगीत बिखरे पड़े हैं जिनके लिए गीयता की शर्त आधुनिक नहीं है। निराला की गीतिका पेय गानों का संक्षिप्त संग्रह है, यद्यपि इसमें कई सुंदर प्रगीत भी हैं। गीतिका के बाहर भी निराला के कई प्रगीत हैं। वस्तुतः चार चार छ छ अथवा आठ आठ चरणों के पुराने मुक्तकों में अनिश्चित चरणों वाली मुक्तक कविता को अलगाने के लिए प्रगीत अथवा लिरिक शब्द का प्रयोग किया गया था। छायावाद के आलोचकों ने संभवतः प्रगीत शब्द का प्रयोग छायावाद की उन तमाम कविताओं के लिए किया जो मुक्तक है। उन्हें मुक्तक न कहकर प्रगीत मुक्तक इसलिए कहा गया कि वे अपने भाव और रूप में मध्ययुगीन मुक्तकों से भिन्न हैं। लिरिक के लिए प्रगीत मुक्तक शब्द चलाने वाले आचार्य शुक्ल का अभिप्राय बहुत कुछ यही था। नंदुलारे वाजपेयी ने भी जब पंत को हिंदी का सबसे बड़ा प्रगीतकार माना है, तो प्रगीत के इस व्यापक अर्थ को ध्यान में रखकर, क्योंकि शुद्ध गीता ने तो पंत ने गीत तो पंत ने प्रसाद निराला और महादेवी से बहुत कम लिखा है। छंद की ही तरह काव्य रूपों की दृष्टि से भी निराला का काव्य छायावाद में सबसे अधिक विविधतापूर्ण है। पूर्ववर्ती युगों की कविता की तुलना में छायावाद काव्य रूप और छंद विन्यास दोनों दृष्टियों से बहुत अधिक समृद्ध है। रीतिकाल में प्राय कवित्त सवैया रोला और दुहा केवल चार छंदों का ही प्रचलन था। भक्ति काव्य में छंदों का की संख्या सात आठ से अधिक न थी। इसके अलावा मध्ययुग की छंद रचना में निर्जीव एक रसता तथा एक रूपता थी। इसमें वैयक्तिक भेद सर्वथा अभाव था। छायावाद में जीवन के हर क्षेत्र में तरह तरह छंद विन्यास में भी हर कवि का अपना वैयक्तिक वैशिष्ट था। कवि को इतनी स्वतंत्रता थी कि वह चाहे जितने छंदों का आविष्कार कर सकता था। निस्संदेह कवियों ने इस स्वच्छंदता का सुंदर सदुपयोग किया। हिंदी कविता उनके आविष्कारों और प्रयोगों से समृद्ध हुई। यहीं पर खुल गए छंद के बंद समाप्त होता है।